Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Krishna Krishna.
Krishna Krishna.
Hare Hare.
Hare Hare.
Hare Rama.
Hare Rama.
Hare Rama.
Hare Rama.
Rama Rama.
Rama Rama.
Hare Hare.
Hare Hare.
Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Radha
Kunja Vihari.
Jai Radha Madhava Kunja Vihari.
Jai Radha Madhava Kunja Vihari. श्रीमती सिवाय ब्लेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन ब्यूटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की श्री श्री राधा पार्थ सारथी की वृद्धाश्रम भगवद गीता की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंद सब मेरे पीछे चल रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञान तिमिरांधश ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोविश्वं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश श्रीरूपां सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतां सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानो सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा
तो आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो भगवद गीता की चर्चा हम करेंगे। तो आप सब परिचित हैं भगवद गीता से। भगवान भगवत गीता का संदेश अर्जुन के माध्यम से प्रदान करते हैं। वास्तव में अर्जुन को भगवत गीता की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान इस जगत में आते हैं और कुंती महारानी महाभारत के उपरांत युद्ध के उपरांत जब कृष्ण वापस द्वारका के लिए जा रहे थे तो कृष्ण जैसे ही रथ के ऊपर बैठे तो कुंती महारानी को लगा कि जितना भी हमारे पास ऐश्वर्य है समृद्धि है फेम यश है या बल है या सारे त्रिभुवन में हमारा नाम आदि है उसके पीछे कौन है कृष्ण है। तो कुंती महारानी से रहा नहीं गया और रोने लगी कि कृष्ण अभी हमारे हस्तिनापुर को छोड़कर जा रहे हैं। अभी रथ में बैठने वाले थे तो कुंती महारानी अपने महल से दौड़ते हुए आती हैं और कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करती हैं। बल्कि कुंती महारानी कृष्ण की बुआ हैं। कृष्ण जब भी आते थे तो क्या करते थे कुंती के चरण स्पर्श करते थे। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है किसी और के चरणों का स्पर्श करना, लेकिन भगवान कृष्ण सारे जगत को ये दिखाना चाहते हैं कि वो कितना अधिक अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। इसलिए कृष्ण के कई सारे गुण हैं, उनमें से एक क्वालिटी या एक गुण है भक्तवत्सलता। भक्तवत्सलता का अर्थ है कि भगवान अपने भक्तों से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि अपने आप को उस भक्त को दे डालते हैं। उस भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए कृष्ण तत्पर रहते हैं, क्योंकि कृष्ण अपने से भी अधिक इस जगत में किससे प्रेम करते हैं तो किससे करते हैं? डिवोटीज, अपने भक्त से। ये जगत में तो उल्टा है, ये जगत में सबसे अधिक हम किससे प्रेम करते हैं? तो अपने आप से। अपने अपने आप से सबसे अधिक हम प्रेम करते हैं, फिर मैं भी अपने शरीर से जो भी बाय प्रोडक्ट है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, गाड़ी है, धन है, अपनी जान खतरे में हो तो उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तत्पर है। कंस, कंस का वैसे आकाशवाणी कंस ने सुनी तो उसने सोचा नहीं कि अभी मेरी नवविवाहिता जो बहन है देवकी, उसका मैं रथ हाँक रहा हूं और अभी इतने शुभ मुहूर्त या मंगल जो दिन है उसमें उसकी हत्या करने के लिए तत्पर हो गया है। तलवार निकलता है और उसके बालक को पकड़ता है। हाँ, विवाह के दिन ही, अभी अभी विवाह के फेरे लगे थे और वो जा रहे थे वापस वर और वधु। हाँ, तो कंस तुरंत मारने के लिए तत्पर होता है, केवल हिरण्यकशिपु प्रह्लाद के लिए। फिर संसार में ऐसे नहीं कि अभी ये सारी घटनाएं हैं, बल्कि ये पूर्व से ही, शुरुआत से ये चलता आया है कि हम इस जगत में सबसे अधिक प्रीति अपने आप से करते हैं। लेकिन भगवान, हाँ भगवान एक बार उद्धव का हाथ पकड़ते हैं। हाँ, उद्धव कौन है? भगवान के चचेरे भाई हैं और महान भक्त हैं। उद्धव का हाथ पकड़कर कृष्ण कहते कि हे उद्धव, हाँ, कि मुझे बलराम इतने प्रिय नहीं है, मुझे लक्ष्मी जो मेरी भार्या है वो इतनी प्रिय नहीं है, या मुझे जो शिवजी हैं वो इतने प्रिय नहीं है, जितना कौन हो तुम मुझे प्रिय हो। इस प्रकार से भगवान की ये भक्त वत्सलता है। भगवान अपने भक्त के प्रति, हाँ, सारा जो सर्वस्व है वो भक्त को दे डालते, अपने आप को दे डालते हैं, अपने से भी बढ़कर अपने भक्त की स्थिति को भगवान स्थापित करते हैं। इसलिए पूरे भगवद गीता में हाँ भगवान हमें कुछ बनने के लिए एनकरेज करते हैं, तो एक ही चीज के लिए कृष्ण एनकरेज करते हैं। तो भगवान हमेशा चाहते हैं कि हम इस भौतिक जगत से निकलकर एक बहुत बड़ा पद हासिल करें। अभी हम इस जगत में आए हैं, हम हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ बनना चाहता है, नहीं, कोई मिस वर्ल्ड बनना चाहता है, कोई मिस यूनिवर्स बनना चाहती है, कोई सबसे बड़ा धनवान बनना चाहता है, कोई सबसे बड़ा ज्ञानवान बनना चाहता है, कोई व्यक्ति एमएलए बनना चाहता है, राष्ट्रपति बनना चाहता है, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, तो कुछ ना कुछ बनने के लिए हम तत्पर है। लेकिन भगवद गीता का एक ही पर्पस है, भगवद गीता का एकमेव उद्देश्य यही है। पूरी भगवद गीता को समझना उसका मतलब है कि कृष्ण एक चीज हमें रियलाइज करवाना चाहते हैं, और वो क्या है? एक चीज, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, कि परम भगवान कृष्ण ही एकमेव परमेश्वर है और बाकी जितने भी जीव आदि हैं उनके शाश्वत सेवक हैं। इसलिए भगवद गीता में भगवान सनातन है। सनातन का मतलब जिसकी ना शुरुआत है ना उसका एंड है, इटरनल, शाश्वत। तो भगवान शाश्वत है और जो जीव है, स्पिरिट सोल है, वो भी शाश्वत है, वो भी इटरनल है। और भगवान और जीव के बीच में जो रिलेशनशिप है, संबंध है, वो भी शाश्वत है। तो लेकिन भगवद गीता आगे क्या कहती है कि हमें फिर हमारा संबंध भगवान से शाश्वत है, तो फिर हमारा शाश्वत ज्योति क्या है वो जानने के लिए भगवद गीता हमें प्रेरित करती है। और भगवान इसलिए इतना बर्डन उठाते हैं। क्या बर्डन उठाते हैं भगवान को? क्या पड़ी है किसी और का ड्राइवर बनने का? अर्जुन के जाकर वो रथ को हाँक रहे हैं, कोई बड़ा ग्लोरियस काम थोड़ी है, क्या कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है? लेकिन भगवान अर्जुन के सारथी बनते हैं और महाभारत के युद्ध के शुरुआत में ही बहुत महत्वपूर्ण संदेश प्रदान करते हैं, और वो क्या है? भगवद गीता है। इसलिए शंकराचार्य कहते भगवत गीता किंचित अधीता गंगा जल लव कलिका पीता। यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता का किंचित भी अध्ययन करता है, भगवान कहते हैं जो व्यक्ति रोज भगवत गीता का अध्ययन करता है, समझने का प्रयास करता है, ऐसा व्यक्ति हर रोज अपने बुद्धि के द्वारा मेरी पूजा कर रहा है और भगवान बहुत उससे आकर्षित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति भगवत गीता को उठाता है और उसको समझ में भी नहीं आ रहा है लेकिन वो ट्राई करता है, तो भगवान कहते ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामो पयाचिते, ऐसे व्यक्ति को मैं बुद्धि प्रदान करता हूं। और कौन सी बुद्धि? जिस बुद्धि के द्वारा वो मेरे पास वापस आ सकता है। ये अंडरस्टैंडिंग उस जीव के हृदय में भगवान प्रदान करते हैं जब हम भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। और भगवान को कैसे समझा जाता है? भगवत गीता के द्वारा। तो अर्जुन को कोई आवश्यकता नहीं थी भगवत गीता की। तो कुंती महारानी ने कहा कि मैं तो एक स्त्री हूं और मैं स्त्री होने के कारण आपको जानना एक स्त्री के लिए बहुत कठिन है। उसके पास इतना उन्नत बुद्धि नहीं होता कि फिलोसॉफी दर्शन आदि को समझे, हाँ क्रिटिकल चीजों को समझे शास्त्रों का। कहते कि स्त्रियों के पास मुश्किल है, लेकिन फिर भी हे कृष्णा आप तो बड़े बड़े योगी ऋषि मुनियों के द्वारा समझे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप मेरे जैसे हाँ एक स्त्री के लिए भी बहुत सरल हो गए हैं। नटो नाट्य धरो यथा, कुंती ने श्लोक बोला। श्रीमद् भागवतम में सबसे पहले हाँ कोई प्रार्थनाएं आती हैं तो वो कुंती महारानी है, और सबसे वंडरफुल सबसे टॉप मोस्ट प्रेयर्स कृष्ण के लिए किसने बोली है श्रीमद् भागवतम में? तो किसने है? कुंती महारानी ने। कुंती महारानी कहती है नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मानिले, हाँ नमस्ते पंकज आंग्रये। तो भगवान कहते कि आपका जो आंखें हैं, आपके चरण आदि हैं, आपके हस्त आदि हैं, वो सब कैसे हैं? कमल के समान हैं। तो वो कुंती महारानी कृष्णा के हस्तिनापुर में निकली रहे थे महाभारत के युद्ध के बाद। तो उस समय कृष्णा तुरंत जब ये प्रार्थना करते कहते कि आप तो नटो नाट्य धरो यथा, आप इस जगत में आते हो तो ये ड्रामा जिस प्रकार से ड्रामा किया जाता है जिसमें जो अभिनेता है वो अपने रियल लाइफ में कुछ और है लेकिन जब वो फिल्म में एक्ट करता है तो कुछ और रोल वो धारण करता है। तो उसी प्रकार से भगवान भी ये जगत में आते हैं और एक एक्ट करते हैं, एक ड्रामा जिसके द्वारा भगवान क्या करते हैं सारे जीवों को एक बहुत ही मूल्यवान संदेश प्रदान करना चाहते हैं। और वो मूल्यवान संदेश भगवान भगवत गीता के द्वारा प्रदान करते हैं और अर्जुन को माध्यम बनाते हैं। जैसे हम हमेशा बताते हैं प्रभुपाद कहा करते थे कि घर में जब कोई सास हो बहू हो और बेटी हो तो जो सास है वो बहू को डायरेक्ट कोई शिक्षा नहीं देगी। सास क्या करेगी? जो भी चीजें बोलनी है अपने बेटी को बोलेगी। तो जो बहू है बुद्धिमान है वो समझ जाती है कि ये सब किसके लिए बोला जा रहा है, मेरे लिए बोला जा रहा है। तो उसी प्रकार से वो बेटी को कोई उपदेशों की आवश्यकता नहीं है, वो सास के अंडर मतलब जो माता है मदर है उसके अंडर वो बचपन से सीख गए हैं, लेकिन बहू को सीखना आवश्यक है नए घर के रीति रिवाज आदि जो भी है कल्चर हाँ प्रिंसिपल्स। तो वैसे ही भगवान अर्जुन जो उनके बहुत प्रिय भक्त है, भक्तों सीमे सखा चेती रहस्यम है तदुत्तमा, कि हे अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, केवल भक्त ही नहीं बल्कि आपका जो मेरे साथ संबंध है वो मैत्री का है, सत्य भाव का संबंध है, इसके कारण तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। भगवान अर्जुन के लिए क्या नहीं करते महाभारत के युद्ध में? तो ऐसे परम भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा भगवत गीता का संदेश प्रदान करते हैं और वो संदेश केवल हमारे लिए है, अर्जुन के लिए नहीं। लोग समझते कि अरे जनरली तो दो चीजें लोग बोलते हैं, एक तो ये अर्जुन के लिए था, अभी थोड़ा द्वापर युग है, ये सब बातें किसके लिए है? द्वापर युग के लोगों के लिए है, अर्जुन के लिए है, उस समय की चीजें हैं। और दूसरा सोचते क्या, अभी तो मैं जवान हूं, ये सब बुढ़ापे का काम है, इस भगवद गीता को उठाना, पढ़ना, समझना, हाँ, चर्चा करना, सुनना, ये सब क्या है, बुढ़ापे में किया जा सकता है। अभी इतनी क्या चल रही है लाइफ में, अभी तो बहुत लंबा जीवन है, लेकिन हमें पता नहीं कि हम हर क्षण हमारी आयु हमारे हाथ से खत्म हो रही है। महाभारत में एक दृष्टांत आता है जिसमें वर्णन आता है, महाभारत में कहते हैं कि एक व्यक्ति के पीछे शेर लगता है तो वो व्यक्ति भागने लगता है, अभी मरता वो क्या नहीं करता, कोई व्यक्ति मृत्यु आ रही है उसके लिए जो मर्जी हो जाए, पूरे वर्ल्ड के हॉस्पिटल्स हम ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे और तीनों प्रकार की दवाइयां शुरू करेंगे, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और कौन सा है, आयुर्वेदिक, सब प्रकार से हाँ हम तत्पर रहेंगे, कुछ भी करने के लिए तैयार है। कोई कहे किसी जंगल में कोई साधु कुछ कुछ भस्म दे रहा है मृत्यु से बचने के लिए, वहां भी जाने के लिए हम तैयार है, तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो एक व्यक्ति जिसके पीछे शेर लगा वो दौड़ते जा रहा था, अभी कहां जाए, देखा कि पेड़ के ऊपर चढ़ता हूं, लेकिन वो पेड़ भी बहुत कठोर था जिसके ऊपर चढ़ना मुश्किल हो रहा था, तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा तो पेड़ से गिर के गिर जाता है और पेड़ बिल्कुल एक कुएं के किनारे में था। जैसे वो गिरता है तो कहां गिरता है, कुएं के अंदर, और कुआं ढका हुआ था हरी हरी घास से, और जैसे वो गिरा अभी उसने सोचा कि अभी मृत्यु निश्चित है, कुएं के अंदर मरूंगा जंगल में इतना दूर, तो फिर वो सोचने, वो जैसे गिरा तो जो भी उसके हाथ में आ जाए वो पकड़ने का प्रयास कर रहा था, तो उसने एक चीज को पकड़ा, क्या उसी पेड़ की जो जड़े हैं वो नीचे की ओर जा रही थी, कैसे तो जड़े हाथ में आए और वो लटक के रह गया। ऊपर शेर आके देख रहा है कि उसका जो भोजन है हाँ वो लटक लटका हुआ है, अभी शेर अपनी जीवा बाहर निकाल रहा है, वो सोचा कब ऊपर आ जाओ, शेर ऊपर बुला रहा है, और ये तो डरा हुआ व्यक्ति है, और नीचे तो कुआं बहुत गहरा है और ये लटका हुआ है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। फिर अचानक थोड़ा समय होता है तो उस पेड़ के ऊपर जो मधुमक्खी का छत्ता है, जब हवा का झोंका आ रहा था तो मधु जो है, शहद है, वो कुछ बूंदे गिरती है, बाय चांस कि वो बूंदे सीधा इसके मुंह में गिर गई। उसने सोचा क्या लाइफ है, हाँ कितना वंडरफुल है, कितना सुख है, हमारी स्थिति वैसी है। एक्चुअली दुख सुख क्या है, जब दो दुखों के बीच में गैप आ जाता है उसको क्या कहते हैं, सुख। दो दुखों के बीच का जो गैप है, दुख हमेशा है, लेकिन बाय चांस थोड़ा सा गैप आ गया, थोड़े से हम नॉर्मल हो गए तो लगते कि हम सुखी हैं। प्रभुपाद कहते थे कि एक व्यक्ति हाँ जिसके सर के ऊपर 24 घंटे जूते की पिटाई हो रही है, टक 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 मार जाना है, और उसको एक घंटे के लिए छोड़ दो और फिर से शुरू कर दो, तो जो एक घंटा है वो कहता है क्या है, अभी मैं सुखी हूं। जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे कि शुरुआत के जमाने में जो राजा लोग हैं किसी को दंडित करना चाहते थे तो वो उसको समझ पानी के बीच में ले जाते थे नाव में, और उसकी शिखा या फिर बाल पकड़कर पानी के अंदर डालते थे बहुत समय तक, जब वो बहुत वेदना होती थी थोड़ी देर के लिए निकालते थे ऊपर सांस लेने के लिए, सांस लेता था फिर डुबा देते थे, तो सांस लेता था तो उसको लगता था अभी मैं सुखी हूं। तो इस जगत के जो लोग हैं उनकी स्थिति दशा ऐसी है, दो दुखों के बीच का जो गैप है उसको सुख मान के बैठे हैं और उसी गैप के लिए सारे कार्यरत हैं, दिन रात लगे हुए हैं। वो व्यक्ति सोच रहा था क्या जीवन है, इतना अच्छा मधु मेरे मुंह में आ रहा है, बैठे बैठे खड़े खड़े लटकते, हाँ तो फिर लेकिन वो भूल गया, नीचे जब उसने दृष्टि डाली नीचे देखा एक आवाज आया जोर से, थोड़ा सा पानी था घुटने इतना, देखा कि आवाज आई जोर से तो देखा एक सांप है बहुत विशाल काल सर्प, क्या कहते हैं इसको महाभारत के लिए काल सर्प नीचे है, और जो जड़ों को भी उसने पकड़ा था तो वो जड़ों में भी चूहे काट रहे थे, सफेद काले कई प्रकार के चूहे तो जड़ों को पकड़ा काटते जा रहे थे काटते जा रहे थे, ऊपर देखो तो शेर, नीचे देखो तो काल सर्प, और जड़ों को पकड़ा हुआ है वो भी चूहे लगे हुए हैं, और फिर भी ये इधर से उधर जा रहा है उस जड़ों को पकड़कर, और अभी वो सारा चीजें भूलकर वो केवल ये सोच रहा है कि यही सुख है, ये जो शहद टपक रही है ना, अभी ऐसे तो नहीं था कि वो शहद कंटिन्यूअसली टपक रही है नीचे, जैसे आप बाथरूम में जाते थे नल ऑन करते हो ना पानी के लिए कंटिन्यूअसली वो बहता है, ऐसे तो नहीं था, वो तो बहुत समय के बाद कोई हवा का झोंका आया जोर से तो थोड़ी सी शहद गिर जाते थे, उसको कैच करने के लिए कभी इधर मुंह खोल रहा है कभी उधर मुंह खोल रहा है, और वो भूल गया है चीजों को, भयावह स्थिति को भूल गया है। तो इस प्रकार से हमारी दयनीय स्थिति है, महाभारत ने दृष्टांत इसलिए दिया है कि जो भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में आया है उसकी ये सिचुएशन है, ये उसका वर्ण चित्रण है, हम अपने सिचुएशन को देखना चाहते हैं तो महाभारत इस दृष्टांत या इस घटना का वर्णन करता है, और वो लाइव मूवी हमें दिखाता है कि हम वास्तव में उस व्यक्ति की जगह है जो इस भौतिक जगत में गिर गए हैं, और गिर के उस शहद का शहद रूपी जो भौतिक थोड़ा सा सुख है उसको प्राप्त करने के लिए लालायित है, और वो सुख कहां से मिलता है हमें इंद्रियों के द्वारा, इस पांच जो ज्ञान इंद्रिया है या पांच कर्म इंद्रिया है, इंद्रियों के माध्यम से जीव सुख को उपभोग करना चाहता है, इसलिए भगवान गीता में कहते हैं यही संस्पर्श जा भोगा दुख एनय एवते अद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा, बुधा का मतलब है बुद्धिमान व्यक्ति, कि यही संस्पर्श जा भोगा इस भौतिक जगत का जो सुख है वो स्पर्श सुख है, यही संस्पर्श जा भोगा दुख एनय एवते, इस भौतिक जगत का जो सुख और सुख जिसको हम मान बैठे हैं वो निश्चित रूप से दुख देगा ही देगा, निश्चित है निश्चित है, आप डिनाई नहीं कर सकते मना नहीं कर सकते, इस भौतिक जगत की चाहे व्यक्ति हो वस्तु हो स्थान हो रिलेशनशिप्स हो यदि कृष्ण उसकी केंद्र बिंदु नहीं है तो निश्चित वो चीज हमारे चिंता का कारण बनेगी ही बनेगी, चाहे हमारे पति है पत्नी है बच्चे हैं धन है कार है घर है संबंध आदि है, यदि इन सबका केंद्र बिंदु कृष्ण नहीं है निश्चित रूप से उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत का सुख या सुख क्या है, यहां जैसे कॉइन होता है तो कॉइन का हेड एंड टेल दोनों होता है, भौतिक जगत में वैसे ही है, कोई भी भोग की जो सामग्री है उसके साथ दोनों चीजें हैं सुख और दुख, आप मना नहीं कर सकते, तो उसी प्रकार से हम जीव भी इस जगत में फंसे हैं, अद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा, भगवान कहते हैं इस भौतिक सुख और सुख का आदि भी है और उसका एक अंत भी है, कोई सुखी रहा लंबे समय तक कष्ट सौख्य निरंतर, अभी कोई व्यक्ति थोड़ा कहते 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 ना कि अरे बीमारी नहीं आई मुझे एक साल हो गया दूसरे साल बीमार रहता है पूरा, हाँ तो हमेशा है कुछ ना कुछ लगा हुआ है, इसलिए चाणक्य पंडित ने एक श्लोक में कहा कष्ट सौख्य निरंतर, कौन ऐसा है कि जो हमेशा हमेशा के लिए सुखी है, तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं नतेषु रमते बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति इस भौतिक जगत का जो सुख और सुख है उसमें रमन नहीं करता उसमें मग्न नहीं होता, वो जानता है कि भौतिक जगत की जो भी इंद्रियों से संबंधित सुख की जो वस्तुएं हैं वो शुरुआत में भी सुख दे सकती हैं ऐसा हमें अनुभव होता है, लेकिन वो अंत में क्या होगी दुख का कारण बनेगी, इसलिए उसको रजोगुण का सुख गीता में कहा गया है, लेकिन आध्यात्मिक सुख क्या है या सतोगुण का सुख जो शुरुआत में थोड़ा सा कड़वा है, थोड़ा सा खट्टा है, लेकिन बाद में क्या है उसकी मिठास ही मिठास है। इसलिए भागवत में ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्रों को उपदेश दिया, उसमें उन्होंने कहा कि ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, कि हे मेरे पुत्रों ये जगत में सुख प्राप्त करना है तो उन्नत आध्यात्मिक सुख की कामना करो। मैं भी शुरुआत में कठोर है, कष्ट होता है, लेकिन आप धीरे धीरे अनुभव करोगे कि वो ऐसा सुख है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे आप आंवला खाते हो ना, आंवला, आंवला ज्यादातर लोग नहीं खाते, जैसे मैंगो काट के दे दो तो मैंगो आप खाते रहोगे, लेकिन आंवला लिया जाए तो कितना बिटर है नहीं, लेकिन बाद में बड़ा स्वीटनेस महसूस होता है, होता ही है। इसलिए शास्त्र कहते हैं बड़ों की जो बात है वो शुरुआत में कड़वी लगती है लेकिन बाद में वो हितकारी है। जैसे लोग होते हैं ना बच्चे, बड़ों की बात को नहीं स्वीकार करेंगे, और कहते हैं क्या ये बूढ़े व्यक्ति बोलते जा रहे हैं, हाँ, लेकिन उसको पता है उनके पास क्या है, अनुभव है, उन्होंने भौतिक जगत के चढ़ उतार आदि को देखा है, वो सब प्रकार के सिचुएशन से गुजरे हैं, तो वो किसी को समझाते हैं, हाँ, तो वो नया नया जो बच्चा है यंग अभी उसके पास एनर्जी है, हाँ, वो एक्सप्लोर करना चाहता है जगत को, तो वो सुनता नहीं है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जो बड़ों की बात है वो शुरुआत में थोड़ी खट्टी या कड़वी हो सकती है लेकिन बाद में बहुत हितकारी है, बहुत लाभदायक है। तो वैसे ही ये जो भगवत गीता है जिसका महत्वपूर्ण संदेश परम भगवान देते हैं, तो वो जो व्यक्ति जो कुएं में पड़ा तो वो हम ही है, कुएं में गिरे हैं और ऊपर दोनों जगह से फंसे हुए हैं, नीचे तो टाइम बॉम्ब लगा हुआ है, हम सबके नीचे क्या लगा हुआ है, टाइम बॉम्ब, और टाइम तो निश्चित है, सांस आपको दी गई है उतनी सांसें लेने का आपके पास अधिकार है। आप डॉक्टर आपको जितने मर्जी पे करो कि वेंटिलेटर लगाओ या जो मर्जी लगाओ, आप एक्स्ट्रा सांस नहीं ले सकते, ये जगत का एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आप एक्स्ट्रा नहीं ले सकते, जितना आपके लिए दिया है उतना ही। इसलिए ईशोपनिषद कहता है तेन तेन मुंजिता कश्यवाम धनम, कि कहते कि जो आपके कोटे में रखा है उतना ही आप इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, तो टाइम बॉम्ब यही है कि हमें हमारा शरीर का अंत निश्चित है, सांस बने बंद होने का अंत निश्चित है, तो वही है मृत्यु, मतलब वो काल सर्प है, वो वेट कर रहा है, समाधि में बैठा है, हाँ, कब अभी। और वास्तव में हम सब सांप के मुंह में है, मैं बचपन में देखता था एक सांप, कई सारे सांप देखे थे, उसमें से एक सांप को देखा जो मेंढक को खा रहा था, तो मैं बड़े बहुत देर से देख रहा था उसको, तो मेंढक आधा उसके मुंह में चला गया है लेकिन फिर भी मेंढक अपनी जीभ बाहर निकाल रहा है कुछ खाने के लिए, अभी भी भोग करना चाहता है, अभी भी इस जगत में एंजॉय करना चाहता है, लेकिन आधा शरीर किसके मुंह में चला गया है, सांप के। वैसे ही हमारी स्थिति है, आधी आयु चली गई, हम सब सांप के मुंह में चले गए हैं, मैं भी कोई 20 साल अंदर चला गया है, कोई 50 साल सांप के मुंह में है, कोई 60 साल है, हाँ, लेकिन हम सब सांप के मुंह में अंदर है और पकड़ के रखा है, और फिर भी हम क्या कर रहे हैं, फिर भी और ट्राई कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास एक आशा लेकर बैठे हैं कि ये जगत ये शरीर मुझे सुख देगा। तो वह व्यक्ति जो दिन रात जो चूहे हैं उनकी तुलना महाभारत कहते हैं सफेद चूहा काला चूहा, दिन है सफेद चूहा और रात क्या है काला चूहा, जो काटते जा रहे हैं। लोग कहते हैं ना दिन नहीं कट रहे हैं, दिन कट रहे हैं, आपके आयु को काट रहे हैं, आपके दिन कटे या ना कटे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्रकृति बहुत कठोर है भगवान की। इसलिए भगवान कहते हैं मम माया दुरतया मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेतम तरन्तिते, मेरी माया है जो प्रकृति है नेचर बहुत कठोर है अर्जुन, इसको पार करना इसको लांघना असंभव है, लेकिन जो व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करता है वो इस कठोर बलशाली जो प्रकृति है माया है बहिरंगा शक्ति है उसको लांघ सकता है। इसलिए हम सभी भौतिक जगत रूपी जंगल में घूम रहे हैं और जंगल में फिर हम घूमते ही जा रहे हैं, तो इसलिए बहुत आवश्यक है। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान बहुत अधिक दयालु है। हाँ, ये जो श्लोक जिसको लिखा है बोर्ड में, हाँ, पांचवे अध्याय का 29वां श्लोक, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरदाम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, तम शांति चाहते जीवन में। शांति शांति का जप करने से शांति नहीं आएगी, ओम शांति ही ये करने से शांति नहीं, शांति भंग हो जाएगी। शांति के लिए शांति का सूत्र समझना होगा, उस सूत्र के अनुसार कार्य करना होगा, तब हमारे जीवन में शांति आएगी। और शांति की अगला स्टेप है सुख। भगवान गीता में कहते हैं अशांत शकुतः सुखम, जिस व्यक्ति के जीवन में शांति ही नहीं है तो वो सुखी कैसे हो सकता है अर्जुन, इस प्रकार से कृष्ण कहते हैं। तो इसलिए ये जानना कृष्ण वास्तव में सूरदम सर्वभूतानां, भगवान हमारे असली हितेशी हैं, भगवान हमारे असली सूरद सखा मित्र बंधु हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। वास्तव में इस जगत के जितने भी संबंध हैं वो एक दिन खत्म होने वाले हैं, है कि नहीं, हम चाहे या न चाहे, ये ट्रूथ है। लेकिन कृष्ण के साथ जो हमारा शाश्वत संबंध है वो हमें जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है और आत्मा भगवान कृष्ण का शाश्वत सेवक है। हाँ, तो हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, हाँ, उसको जानना आवश्यक है। इसलिए भगवत गीता को संबंध ज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संबंध ज्ञान। तीन सारे वेद उपनिषद पुराण इतिहास, इतिहास क्या है, महाभारत और रामायण, इसको इतिहास कहते हैं। तो ये सारे जो वैदिक ग्रंथ हैं एक पेड़ के समान है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। तो सारे जो शास्त्र हैं उनकी तुलना एक वृक्ष से की गई है और उस वृक्ष का जो परिपक्व फल है वो श्रीमद् भागवतम है, शास्त्र कहते हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संवितम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावका, कि हे भक्तो क्या करो, श्रीमद् भागवतम रूपी जो ग्रंथ है उसको पियो। तो भगवत गीता संबंध का ज्ञान देती है कि हम कौन हैं, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, भौतिक प्रकृति क्या है, उसका भगवान के साथ क्या संबंध है, ये सब चीजें। और भगवान गीता के अंत में कहते सर्व धर्मा परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण ग्रहण करो। तो फिर हमारा संबंध पता चल गया, लेकिन संबंध को डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, तो संबंध का जो नेक्स्ट नॉलेज है, सारे शास्त्रों में तीन ज्ञान का वर्णन है। पहला है संबंध ज्ञान, दूसरा है अभिधेय ज्ञान, ये टेक्निकल शब्द शास्त्रों में यूज किए गए हैं, अभिधेय ज्ञान, और तीसरा है प्रयोजन ज्ञान। तो संबंध ज्ञान का मतलब है कि क्या रिलेशनशिप है, और अभिधेय ज्ञान का मतलब है कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे संबंध जागृत हो जाए, पक्का हो जाए। और जिसके द्वारा तीसरी चीज प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब है गोल, प्रयोजन गोल, गोल क्या है, भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम को विकसित करना। क्योंकि हम सबके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, इसलिए शास्त्र कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमा साध्य कबुनाय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कराय उदय। जैसे छोटा सा बच्चा है तो वो उसके अंदर चलने की क्षमता है कि नहीं, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा प्रैक्टिस करेगा वो चलने लगता है। तो वैसे ही हर जीव के अंदर, हर जीवात्मा के अंदर प्रेम करने की एक गुण है, प्रेम करने का एक गुण धर्म है। और वो क्या है कि हम वास्तव में भगवान से हम वास्तविक प्रेम करते हैं। लेकिन अभी जो प्रेम की भावना है, सेवा की भावना है, हाँ, ये हमारे हृदय में हमेशा है, सेवा की भावना, प्रेम की भावना, लेकिन अभी भगवान के अलावा बाकी चीजों में है। तो लेकिन भगवान के प्रति प्रेम या सेवा की भावना को जागृत करने के लिए शास्त्र कहते हैं क्या करो, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते। आपको श्रवण करना होगा, आदि आदि में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान के सेवा करना, उनका स्मरण करना, उनके धाम का विजिट करना, सब प्रकार से कार्य में लगना भगवान की सेवा के लिए। जब ये कोई व्यक्ति करने लगता है तो उसके हृदय में भगवान के प्रति स्वाभाविक आकर्षण जागृत होता है, होता है कि नहीं? हाँ, और वैसा आकर्षण जागृत होना चाहिए जैसे एक युवक किसी युवती को देखता है तो स्वाभाविक उसका हृदय आकर्षित हो जाता है। तो वास्तव में वो जो आकर्षण तीव्र है वैसा ही तीव्र आकर्षण हरेक जीव के हृदय में भगवान के लिए है, ये नेचुरल है। लेकिन अभी वो आकर्षण का स्थान इस भौतिक आकर्षण ने लिया है। इसलिए भगवत भक्ति करने से क्या होगा कि वो तीव्र आकर्षण भगवान के प्रति हमारे हृदय में जागृत हो जाएगा। और इसलिए व्यक्ति के पास मनुष्य का जीवन है, ये जीवन ये कोई भोग योनि नहीं है। ये श्लोक का शुरुआत का ही शब्द है भोक्तारम, भोक्ता। वास्तव में हम सब क्या बनना चाहते हैं? भोक्ता बनना चाहते हैं। भोक्ता का मतलब है भोग करने वाला, इंजॉयर। तो हम भोक्ता बनना चाहते हैं और हम भगवान के धाम से इसलिए जीवों को इस जगत में डाला गया है। जो भी जीव, क्योंकि भगवान कहते हैं अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं सारे यज्ञों का भोक्ता हूं। भगवत गीता में सब जगह भगवान ने अपने आप को बोला है। भगवान ने कहा मत्त सर्वम प्रवर्तते, मुझसे सारी चीजें उद्भूत हो गई है, अहम सर्वस्य प्रभो। भगवान कहते मुझसे आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत दोनों ही प्रकट हो गया है। तो इस प्रकार से भगवान भगवत गीता में हर बार इस चीज का उल्लेख करते हैं कि मैं परम भगवान। हाँ, उसके बाद किसी की हिम्मत हुई है कि कोई देवता आए, शिव जी, गणेश, ब्रह्मा, दुर्गा जी, इंद्र, चंद्र, वरुण आए, उन्होंने कहा गीता में जो कृष्ण है ना उन्होंने गलत बोला है, मैं भगवान हूं, ऐसा कोई उल्लेख आया आपके पढ़ने में शास्त्रों में? हाँ, कहा सुनने में आया है, नहीं। कोई से हिम्मत कैसे हो सकती है? इंद्र ने थोड़ी हिम्मत की थी, वो भूल गया। इंद्र सोचने लगा मैं ही भगवान हूं। उन्होंने क्या किया, ब्रजवासियों को तंग करना शुरू किया, इतना सारा जल पोरिंग करने लगा, वर्षा करने लगा। फिर भगवान ने बहुत सरलता से उसके गर्व को चूर चूर कर दिया। क्या उठाया भगवान ने? गिरिराज गोवर्धन के। तो भगवान ने गोवर्धन उठाया। इस प्रकार से भगवान भगवत गीता में अपनी जो सर्वोच्चता है उसको स्थापित करते हैं और आज तक किसी ने उसको अस्वीकार नहीं किया है। तो भगवान कहते भोक्तारम यज्ञ तपसा, मैं सारे जगत का भोक्ता हूं, स्वामी हूं, कंट्रोलर हूं, नियंता हूं। तो जब जीव भगवान के धाम में था तो वो उसके अंदर थोड़ी सी इच्छा आ गई, अरे ये भगवान कृष्ण ही क्यों भोक्ता है, मैं बैठ जाता एक दिन। जैसे कोई होता है ना बॉस होता है ऑफिस में, तो कोई जो नौकर है ऑफिस वर्कर है वो सोचता है बॉस ही क्यों चेयर में बैठता है रोज, बड़ी चेयर में और इतने बड़े ऑफिस में, मैं बैठता हूं, मैं दिखाता हूं। और एक दिन बॉस आने से पहले जाकर उसके ऑफिस में चेयर में जाकर बैठकर बजाने लगता है, इसको बुला रहा है, उसको बुला रहा है। बॉस आ जाता है सामने, तो बॉस कहेगा कि नहीं पागल हो गया है, इसको बुलाएगा, किसको बुलाएगा? पुलिस को, और इसको जेल में भेज देगा। तो वैसे ही है भगवान ने, भगवान का जो स्थान है वे सारे जो क्षुद्र जीव है ना छोटे से वो लेना चाह रहे थे। अभी हम कितने बड़े हैं, यदि हम अपने बारे में सोचे तो हमें पता चलेगा कि धूलि का कण उससे बड़ा है। भगवान उपनिषद आदि वर्णन करते हैं कि हमारा साइज क्या है, बालाग्रह शत भागश शतधा कल्पित शश। बाल के अग्रह भाग की जब 10,000 टुकड़े करोगे और उसका जो साइज है वो हमारा साइज है, हम इतने बड़े हैं, अब सोचो। लेकिन हमारे अंदर इतना बड़ा अहंकार है, भगवान का स्थान लेना चाहते हैं, हम तो उस मेंढक की तरह है, एक बार एक सरोवर था, उसके किनारे ना चार पांच मेंढकों का टीम था। अभी चार पांच लोग होते हैं तो आपस में एक दूसरे की होड़ लगे रहते कि मैं क्या हूं। इस संसार में यही है, लोग जब एक दूसरे को मिलेंगे तो केवल यही बातें करेंगे कि मैंने किया क्या, मैं कौन हूं। हाँ, इसी को मैं अपना जो वर्चस्व है उसको स्थापित करना चाहते हैं, या फिर ये दिखाना चाहते कि मैं कितना ज्ञानवान हूं, मतलब भगवान को डिपिक्ट करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं मैं भूत वर्तमान और भविष्य को जानता हूं। अभी भगवान से बढ़कर हम जान सकते हैं क्या? नहीं। हम थोड़ा सा कुछ जनरल नॉलेज का कुछ छोटी छोटी चीजें जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम इतने गर्वित हो जाते हैं। तो ये जो मेंढकों का टीम जो था, ये आपस में बातें करते जा रहा था, फिर एक ने कहा कि ये जो हाथी है ना, बहुत सारे हाथी आते थे वहां से पानी पीने के लिए, स्नान करने के लिए। तो एक मेंढक बड़ा घमंडित हो गया, उसने कहा क्या है, एक क्यों आता है इधर ना, आते हैं और मस्ती करते रहते, आज आने दो उसको, हाथी को आने दो, मैं दिखाऊंगा उसे। अब ये चार पांच दूसरे मेंढक ने कहा हाँ तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम दिखा सकते हो। अभी वो मेंढक ऐसे खड़े थे अपना सीना तान के, सीना तान के होता है व्यक्ति चौड़ा हो जाता है, ना बहुत चौड़ा हो गया है, वैसे वो मेंढक चौड़ा होकर खड़ा था। आ गया हाथी, अभी वो चिल्ला रहा है भी नीचे से। अभी हाथी ने देखा कि क्या है, उसको दया आ रही थी हाथी को। तो हाथी कहते ठीक है अभी दया करता हूँ, लेकिन बहुत ही चौड़ा हो रहा है। तो हाथी वहां से जाते जाते, हाथी क्या करता है, जाते जाते अपना जो मल है वो त्यागता है किसके ऊपर, हाँ इतना हैवी होता है उसका मल, तो वो मेंढक मर जाता है। तो हमारी वैसी स्थिति है, हम भगवान का स्थान लेना चाहते हैं, हम बने नहीं उसके लिए, हम बने किसके लिए हैं, सेवा करने के लिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ऐसे नहीं कि कभी कभी दास और कभी कभी बॉस, ऐसे नहीं। शास्त्र कहते हैं कि ये जो जीव बना है हमेशा के लिए भगवान की सेवा के लिए, उनकी सेवा नहीं करेगा तो किसी ना किसी की सेवा करेगा। तो इसलिए हमारी ये पोजीशन है, और ये सेवा के भावना के द्वारा आप सारे जगत को जीत सकते हो, भगवान को आप जीत सकते हो। जीत सकते हो कि नहीं जीत सकते, हाँ ये ऐसी चीज है, सर्विस इतनी मूल्यवान वस्तु है कि उसके द्वारा कृष्ण भी आपके कंट्रोल में आ सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन चास्ति तत्वतः, भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। पूरी भगवत गीता में भगवान ने हमें कुछ और बनने के लिए नहीं बोला। हाँ हम संसार में जन्म लेते तो सोचते मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, लेकिन भगवान ने वो सब बनने के लिए हमें एनकरेज नहीं किया। भगवान छठे अध्याय के आखिरी में अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन कुछ बनना है तो एक चीज बनो। भगवान कहते हैं तपस्वी व्याधि को योगी, ज्ञानी व्योगी मतोधिकः, कर्म व्याचाधि को योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। भव मीन्स बनो, हो जाओ। क्या बनो? योगी बनो। क्या बोला भगवान ने? लेकिन हम सब रोगी हैं, ये जगत में आए हैं, रोगी नहीं बनेंगे, योगी नहीं बन रहे हैं, हम रोगी बन रहे हैं। पहले तो हम भोगी बनना चाहते हैं, इसलिए शास्त्र कहते हैं भोगे रोग भया। जो इस भौतिक जगत में भोग की भावना को धारण करके जीवन जीता है उसको हमेशा डर लगा रहता है, रोग आदि का हमेशा भयभीत रहता है, उसका हृदय उसका मन चिंतित रहता है, हमेशा भय है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं, भगवान कहते हैं कि अर्जुन कुछ बनना ही बनना है तो अब योगी बनो। लेकिन कौन सा योगी बनो? तो आखिरी श्लोक में कहते हैं योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो मां समययुक्त तमोमतः। भगवान कहते हैं योगिनामपि सर्वेषां, हम सबसे बड़ा बनना चाहते तो भगवान कहते बनो ना बड़ा, मैं तो चाहता हूं कि आप बड़ा बनो। हाँ प्रभुपाद कहा करते थे कि जो ये निराकारवादी है, मायावादी है, शंकराचार्य के अनुयायी है, वो भगवान बनना चाहते हैं, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं हम भगवान नहीं बनना चाहते, हम भगवान से भी बढ़कर बनना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं हम? भगवान से भी बढ़कर। हाँ, कृष्ण छोटे भाई गाते के लिए, यशोदा के लिए, यशोदा बड़ी है कि नहीं? मार रही है, पिटाई कर रही है, बांध रही है। तो भगवान का जो भक्त का पोजीशन है, भगवान कहते हैं बनना है तो सर्वेशां, सबसे बड़ा बनो। क्या? योगी नाम अपि सर्वेशां मद गते अंतरात्मना। हाँ, श्रद्धावान भजते योमा। हाँ, दो चीजें कहते हैं बड़े बनने के लिए, क्या है? भगवान के लिए बनना है तो भक्ति योगी बनो। और भक्ति योगी क्या है, उसके दो लक्षण, एक है मद गते अंतरात्मना, जिसका गोल मैं हूं और जो सदैव मेरे बारे में चिंतन करता रहता है, मेरे बारे में सोचता है, उसका मन मुझ में लगा रहता है। और दूसरी चीज कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान भजते, श्रद्धा के साथ मेरी भजन करता है या मेरी सेवा में लगा रहता है निरंतर। यह है टॉप मोस्ट पोजीशन। तो भगवान हमें बहुत बड़े पोजीशन में रखना चाहते हैं, हम छोटी छोटी पोजीशन के लिए पागल हो गए हैं। भगवान तो कहते हैं आप भक्त बनो, और भक्त बनना इस संसार का सबसे बड़ा, हाँ सबसे बड़ा पोजीशन है, सबसे बड़ा कार्य है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से मिलते हैं। हाँ, 500 साल पहले रामानंद राय बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु ने गोदावरी के किनारे उनके साथ बैठे और कहा कि मुझे आपसे सुनना है। तो रामानंद राय ने कहा कि हे चैतन्य देव, आप तो स्वयं भगवान हो। तो चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं, वो पूछते हैं कीर्ति गण मध्य जीवेर कौन बड़ा कीर्ति, कीर्ति मीन्स फेम, यश। या चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न पूछा कि व्यक्ति इस संसार में कीर्तिमान बनना चाहता है, नहीं यश, यशस्वी बनना चाहता है, फेमस बनना चाहता है। तो महाप्रभु ने पूछा कि हे रामानंद राय बताओ, ये जगत में सबसे बड़ा यश या फेम क्या है, कीर्ति क्या है? तो उन्होंने कहा कृष्ण भक्त बलिया जाहर हय ख्याति, कृष्ण भक्त बनना ये वास्तव में इस जगत में सबसे बड़ा यश है, ख्याति है। और यही ख्याति, यही यश हाँ भगवान कृष्ण हमें देना चाहते हैं। लेकिन हम इतने महत्वपूर्ण पोजीशन को स्वीकार नहीं करना चाहते, हम छोटी छोटी चीजों के पीछे लगे हुए हैं, हम इस जगत में भोक्ता बनना चाहते हैं, हम कैसे शांति प्राप्त करेंगे अपने जीवन में? तो शांति का सूत्र यही है कि सबसे पहले जानना कि मैं भोक्ता या एंजॉयर नहीं हूं, कृष्ण परम भोक्ता है। इसलिए हम भगवान को क्या करते, भोग लगाते, लगाते नहीं, वो उसका वो ये है कि भगवान तो भोग लगाते हैं, भगवान की सेवा में मग्न होते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग के साथ कि कृष्ण परम भोक्ता है। और दूसरी चीज क्या है, सर्वलोक महेश्वरम, सारे जगत के भगवान परमेश्वर है, त्रिभुवन आदि के। और सूर्यदम सर्वभूतानां, जैसे मैंने पहले कहा कि हम कृष्ण सारे जीवों के असली हितेशी हैं। इस संसार में कोई बहुत बड़ा दानी हो सकता है, हितेशी हो सकता है, लेकिन कृष्ण से बढ़कर कोई इस संसार में हितेशी हो ही नहीं है। तो हमें हमेशा सोचना चाहिए, और ये तीन चीजों को व्यक्ति सोचता है और अपने भोग करने की भावना को त्याग देता है, तो हम शांति को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। जितना आप भौतिक भोग में मग्न रहते हैं उतना जीवन अशांतमय होने लगता है, उतनी चिंताएं हमारे जीवन में बढ़ती हैं, उतनी कठिनाई जीवन में आती है, शारीरिक मानसिक सामाजिक सब प्रकार से व्यक्ति तंग आ जाता है। तो हम भोग करने के लिए बने नहीं हैं, क्योंकि हम किसी वस्तु का भोग करते हैं तो वास्तव में वो वस्तु वैसी है, हम भोगे जा रहे हैं उस वस्तु के द्वारा, हमारा जीवन क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहा है। तो हम भोगता है तो हमारा जीवन खत्म होना नहीं चाहिए, हमारी शक्ति खत्म नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन देखो दिन ब दिन हम खत्म होते जा रहे हैं, बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो इसलिए इस भावना को समझना कि कृष्ण वास्तव में भोक्ता है और आप झूठे भोक्ता बनने का प्रयास कर रहे हैं इस जगत में, हाँ, लेकिन हम भोक्ता नहीं है। जैसे परम भगवान कृष्ण के समय में, हाँ, एक राजा थे जिनका नाम था पौंड्रक। क्या नाम था? पौंड्रक। दंतवक्र और पौंड्रक, ये दो भाई। जो पौंड्रक है वो, हाँ, दूसरे एक राजा थे जिनका नाम था काशीराज, उनका मित्र था। तो वो ये जो पौंड्रक है, ये पौंड्रक, हाँ, निवास करता था एक स्थान में और भगवान कृष्ण उस समय द्वारका में निवास करते थे। वृंदावन में रहे 11 साल, फिर मथुरा में, मथुरा से द्वारका गए और द्वारका में अपने सारे भक्तों के संग में रहे, यदुवंशियों के साथ। तो उस समय ये जो पौंड्रक है, इसको लगा कि ये जो कृष्ण है ये झूठ मूठ का ही अपने आप को वासुदेव कहलाता है। तो एक दिन, हाँ, इस पौंड्रक जो राजा था वो कहता था कि मैं ही वासुदेव हूं, मैं ही नारायण हूं। हाँ, जैसे अभी प्रभुपाद कहते कि जैसे बच्चे खेल खेल में किसी को राजा बना दे तो वो अपने आप को राजा मान लेता है ना, लेकिन वो वास्तव में राजा नहीं है। हाँ, वो मूर्खता के कारण वो राजा अपने आप को समझता है। तो लेकिन जब ये जो पौंड्रक है, उसने क्या किया, एक मैसेंजर, एक संदेशवाहक को भेजा द्वारका, एक बहुत बड़ा लेटर लेकर। वो लेटर लेके गया और उन्होंने कृष्ण को चैलेंज किया, कृष्ण को कहा, वो लेटर कृष्ण के सामने पढ़ने लगा कि मैं राजा पौंड्रक के द्वारा आया हूं और ये मैसेज आपके लिए उन्होंने भेजा है। तो कृष्ण, उग्रसेन, बलराम, उद्धव, अक्रूर, ये सारे सुधर्वा सभा भवन जो था उसमें बैठे थे और ये मैसेंजर उस न्यूज को पढ़ने लगा, दूत पढ़ने लगा कि पौंड्रक ने कहा है, पौंड्रक ने बोला उस लेटर में, उस मैसेज में कि मैं वास्तव में वासुदेव हूं, मैं नारायण हूं और इस जगत में मैं अवतरित हुआ हूं बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। हर तुम तो अपने आप को क्या समझ रखा है, द्वारका में आपने पानी के बीच में शहर नहीं बना दिया तो आपने आप को भगवान समझने लगे। उस पौंड्रक को ऐसे बहुत चिंते बोलने लगा। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, तुम ये जो शंख चक्र गदा पद्म लेके घूमते रहते हो और ये वासुदेव टाइटल जो तुमने रखा है ना, इसको त्याग दो और ये जो शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, उसको भी छोड़ दो और मेरे शरण में आ जाओ। कौन कह रहा है? पौंड्रक। हम वास्तव में हम भोक्ता बनना चाहते हैं, मतलब हम भगवान बनना चाहते हैं, भगवान की पोजीशन हम लेना चाहते हैं। तो फिर जब ये हो रहा था तो सब लोग जोर जोर से हंसने लगे उस लेटर को पढ़कर। तो भगवान कृष्ण उस दूत को कहते कि जाकर तुम्हारे स्वामी को ये संदेश दो। भगवान कहते कि उसको बोलो कि मैं उसे कह रहा हूं कि तुम मूर्ख हो, अव्वल दर्जे के मूर्ख हो। उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि मैं कभी भी अपना ये वासुदेव नाम त्यागूंगा नहीं। वासुदेव नाम कृष्ण का क्यों है? क्योंकि उनके पिता का नाम क्या है? वसुदेव। वसुदेव के पुत्र वासुदेव। और उन्होंने कहा मैं ये शंख चक्र तो त्यागूंगा नहीं, लेकिन चक्र जरूर त्यागूंगा, छोड़ूंगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर छोड़ूंगा और तुम्हारे गर्दन को काटूंगा और उसको फेंक दूंगा और तुम्हारे जो शरीर है उसको कुत्तों के सामने फेंकूंगा जिससे कुत्ते आनंदित होकर उसका भक्षण करेंगे, जाओ उसको बताओ। तो ये गया। तो ये जो पौंड्रक है अपने मित्र के साथ काशी में निवास कर रहा था, काशीराज दूसरा उसका मित्र था। ये दोनों भगवान से शत्रुता रखते थे। तो शिवजी ने काशी शहर बनाया था, हाँ, जिसको बनारस कहते हैं। तो जब पार्वती ने कहा कि आपसे विवाह किया, आप तो घूमते रहते हो, ना वस्त्र है, ना घर है, ना कुछ वस्त्र चीजें हैं, तो उन्होंने कहा कब तक आपके साथ में रहूं एक पेड़ के नीचे, हाँ, आप कुछ घर या कुछ शहर बनाओ। तो शिवजी ने कहा ठीक है, बहुत पीछे लगी हो, अब एक शहर बना लेता हूं। तो उन्होंने काशी का निर्माण किया। कुछ दिन रहे, क्योंकि भगवान जो शिव है और पार्वती है सदैव अपना समय कृष्ण कथा में गंवाते हैं, कृष्ण कथा में इस्तेमाल करते हैं।
वो खाली नहीं नजर आएंगे आपको। या तो शिव जी हमेशा बोलते रहते कृष्ण की गुणगान करते हैं, पार्वती हमेशा कृष्ण प्रश्न पूछते रहती हैं और सदैव हरि नाम करते हैं, हरे कृष्णा जोर से,
तो फिर शिव जी भी उस काशी को त्यागते और एक राजा को देते, उनके जो भक्त थे काशी राज। तो भगवान ने अपनी सेना को लिया, द्वारका को छोड़ा और आ गए पौंडर के साथ युद्ध करने। पौंडर को पता चला कि दोनों निकले बाहर काशी से, हम काशी सिटी से बाहर आए, काशीराज और पौंडर। और ये जो पौंडर की खासियत क्या थी, भगवान ने उसको पहली बार देखा, बड़ा विचित्र वेश था। क्या कि है तो सर्व सामान्य राजा, लेकिन पौंडर ने जब रथ के ऊपर बैठा था तो वासुदेव का रूप धारण किया था, अपने दो और हाथ लगा दिए थे, चार हाथ लेकर आया था। और उसका जो भगवान जो तलवार रखते हैं जिसका नाम है नंदक, या फिर भगवान जो धनुष रखते हैं शार्प धनुष है, तो ये सब डुप्लीकेट बनाकर वो अपने साथ रखा था। और रथ भी वैसे ही था, और जो पताका भगवान के रथ के ऊपर होती है उसमें गरुड़ का चिन्ह होता है या हनुमान, तो वो सब चिन्ह वगैरह पेंट करके वो आ गया था। किसके साथ युद्ध करने? असली वासुदेव के साथ। अभी नकली वासुदेव थोड़ी रह सकता है वहां। तो भगवान देखा कि ये क्या है विचित्र वेश, कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे, भगवान हंसने लगे कि हद हो गई, ये जो जीव है भगवान बनना चाहता है, मेरा स्थान ग्रहण करना चाहता है, भोक्ता बनना चाहता है। तो भगवान रणांगण में हंसने लगे और बोलने लगे, पौंडर्य अभी ना निश्चित रूप से मैं ये जो चक्र है ना तुमने कहा था ना छोड़ो त्याग दो, अभी छोड़ ही रहा हूं, सही समय आ गया है। भगवान ने अपना चक्र त्यागा और सीधा उसी क्षणों में पौंडर्य का सर है अलग कर दिया। तो हम भी छोटे छोटे पौंडर्य है, हम भी पौंडर्य की तरह अपने आप को स्थापित करते हैं भोक्ता के रूप में इस जगत में, एंजॉयर के रूप में, इसलिए हम अशांत हैं। हाँ, तो कैसे हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं? जो भगवत गीता का ये जो अमूल्य संदेश है उसको हम समझते हैं और अपने जीवन में उसको धारण करते हैं। और महत्वपूर्ण संदेश क्या है भगवत गीता का? भगवान कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो माध्याजी मां नमस्करो, कि आप क्या करो, आपका मन मुझ में लगाओ, मेरा भक्त बनो, मुझे ही नमस्कार करो। तो इस प्रकार से यदि हम अपना जीवन, अपना मन, शरीर, वाणी, हम सबके पास क्या है? BMW है कि नहीं? किसके पास नहीं है बताइए? सबके पास है। हाँ, BMW का मतलब है शरीर, मन, वाणी। हाँ, तो जो बॉडी और माइंड और वर्ड्स है ना, BMW, तो हम सबके पास है। तो भगवान की सेवा में यदि हम लगाते हैं अपने आप को, मन को, शरीर को, वाणी को, तो हम सफल हो जाते हैं। और बहुत सरलता से शांति, तो नीचे का धरातल है शांति प्राप्त करना, भक्ति में लगने मात्र से शांति अपने आप प्राप्त हो जाती है। लेकिन उससे भी परे क्या है? सुख, भगवत भक्ति का जो सुख है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। भौतिक जगत में सुख प्राप्ति करने के लिए सुबह जल्दी उठ के नौकरी में भागना पड़ता है, और सुख कब? महीने के आखिर में सुख मिलता है कि नहीं? रोज तो सुख नहीं मिलता, रोज तो बॉस की डांट मिलती है, टेंशन मिलते हैं, घर आओ तो जैसे सब जगह व्यक्ति परेशान है। तो वास्तव में आध्यात्मिक सुख बड़ा सरल है, उसके लिए क्या चाहिए? इंस्टेंट है। आध्यात्मिक सुख क्या है? आप अनुभव कर सकते हो तुरंत, भौतिक सुख अनुभव नहीं कर सकते। भौतिक सुख के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, लोग कहते हैं ना आजकल तो पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, मतलब बहुत कष्ट है। तो आध्यात्मिक सुख के लिए सरल है, क्या चाहिए हमारे पास? हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, इसके लिए हमारा हृदय सरल होना चाहिए। पूर्णामृत स्वादनम, कि इस भगवान के नाम रूप गुण लीला इतना मधुर है, आनंददायक है, इसमें हम यदि निमग्न हो जाते हैं, भौतिक सुख हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, जो छह गोस्वामी थे, हाँ आप जानते हैं छह गोस्वामी के बारे में, तत्वा पूर्णम अशेष मंडल गति श्रेणी सदा तुच्छवत, कि ये छह गोस्वामी बड़े बड़े, अब तो कोई प्राइम मिनिस्टर था, तो कोई राजा था, तो कोई राजा का पुत्र था, इन सब ने भौतिक संपदा आदि उनके लिए हाँ एक तुच्छ तिनके के समान थे। इन सबको तोड़ छोड़कर भगवान की शरण उन्होंने ग्रहण किए थे। हाँ, क्योंकि भगवत भक्ति का जो सुख है वो सर्वोच्च, और हम सब अनुभव करते हैं। लाइफ जैसे बीतता है, व्यक्ति को रियलाइजेशन आना शुरू हो जाती है ना, कि कुछ तो मिसिंग है लाइफ में, है ना, कुछ तो कमी है। और वो कमी क्या है, लाइफ में कृष्ण नहीं है, कृष्ण की कमी है, हमारे ऊपर है। या तो दुर्योधन बनना है या अर्जुन बनना है। दुर्योधन कृष्ण को अपने जीवन में नहीं चाह रहा था, कृष्ण की जो सेना है सब कुछ उसने इकट्ठा कर दिया, लाइफ में सब चीजें उन्होंने प्राप्त की दुर्योधन ने, बड़े बड़े राजा, धन, ऐश्वर्य, सेना, पोजीशन, सब कुछ, लेकिन एक चीज की कमी रही उसके लाइफ में, क्या थे वो, कृष्ण। और देखा उसको क्या हो गया। हाँ, लेकिन अर्जुन और पांडवों की एक खासियत थी, उन्होंने किसी चीज के पीछे लगे वो तो किसके पीछे, कृष्ण के पीछे। लाइफ में कृष्ण को प्राथमिकता देना, इसलिए हमें कृष्ण को अपनी लाइफ में प्राथमिकता देनी चाहिए। कैसे, हाँ, सुबह जल्दी उठकर भगवान के नाम का जप करें, भगवान के बारे में पढ़ें, दिन में जरूरी टाइम मिले सुने, हाँ चर्चा करें, भगवान की सेवा करने का प्रयास करें। हाँ, जैसे ये महीना है, हाँ भगवान की गीता वितरण का महीना है, हाँ अभी 13 तारीख आएगी शायद ना, अभी मोक्षदा एकादशी आएगी आसपास, तो उस दिन भगवान ने भगवद गीता को बोला था, हाँ इतना महत्वपूर्ण सेवा करने का मौका हमें मिल रहा है, भगवान की डायरेक्ट सेवा है। हाँ, इसको जो भगवान देखते हैं कि मेरे इस वाणी का कोई प्रचार कर रहा है, तो भगवान रो पड़ते हैं, भगवान सोचते कि कितना कष्ट उठा रहा है मेरी सेवा के लिए। इस संसार में एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए दिन रात कष्ट करता है, अपनी अपनी सारी इच्छाओं को तोड़ देता है, खत्म करता है, भूल जाता है, पी जाता है, लेकिन अपने बच्चे हैं, हाँ सबकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए लगा रहते हैं, नहीं। और जब इसको बुढ़ापा आता है तो वही लोग चिल्लाते हैं कि क्या किया, कृतज्ञ हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कृतज्ञ, बल्कि उनको कृतज्ञ होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, अनग्रेटफुल होते हैं। तो कृष्ण कि हम थोड़ी भी सेवा करते हैं तो कृष्ण सदैव ऋणी रहते हैं, सदैव ऋणी रहते हैं, भूलते नहीं है, छोटी से छोटी चीज करने से। इसलिए भगवान ने कहा ना, नेहा विक्रम अनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। स्वल्प अपि, थोड़ा भी सेवा करते हो हे अर्जुन, मैं महान भय से रक्षा करता हूं। भगवान थोड़े से भी सेवा को देखते हैं तो भगवान अपने आप को दे डालते हैं। जैसे एक व्यक्ति, एक युवक कुछ फूल का, कुछ गुलाब के फूल लेके जा रहा था अपने किसी युवती को देने के लिए, और बीच में नाव में बैठ गया और वो नाव डूब गई। अभी उसने सोचा कि फूल तो डूब ही रहे हैं, उसको पता था एक मंत्र कि फूल जब भगवान को अर्पित करते तो बोला जाता है ना कृष्ण अर्पण अवस्तु, तो उसको याद आया, अरे अभी फूल तो ना मेरी प्रिया को मिल रहे हैं, कम से कम फूल में डूब रहा हो तो किसको अर्पित करो, कृष्ण अर्पण, भगवान को अर्पित कर दिए गिरते गिरते पाने में। भगवान ने सोचा अरे ये मुझे अर्पित कर रहा है, तो उसको गति, बहुत अच्छा गति मिला। तो इस प्रकार से भगवान थोड़ी भी सेवा हम करते हैं तो सदैव कृतज्ञ कृतज्ञ रहते हैं, ऋणी रहते हैं, वो भूलते नहीं है। इस संसार में आप किसी के लिए कुछ करोगे तो हर साल आपको करना होगा। जैसे किसी का बर्थडे है, आप भूल गए एक साल तो कहेंगे क्या, आपसे बोलना ही बंद कर देंगे, रिलेशन खट्टा हो जाएगा, नहीं। इस जगत में हम देखते हैं, लेकिन कृष्ण कभी भी, जैसे लोग कहते ना, हम मिलते तो कहते कि हम हमेशा मंदिर जाते हैं, रेगुलर है, बहुत रेगुलर है। क्या है रेगुलर, जन्माष्टमी जाते हैं, ये उनका रेगुलर विजिट है, हर साल में एक बार जाएंगे, खैर हम रेगुलर मंदिर जाते हैं। तो भगवान फिर भी नहीं भूलते कि हाँ ये आया है, तो इसलिए ये अपॉर्चुनिटी है कृष्ण को प्रसन्न करने की। और जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो भोक्ता बनने की जो भावना है वो खत्म हो जाती है, और फिर हम वास्तव में हृदय में बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से जो शांति है, सुख है, उसकी अनुभूति करते हैं। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे।